यहाँ मॉम, मुझे आपसे एक परमिशन लेनी थी। मनाल ने अनीता जी की ओर देखकर धीरे से कहा। अनीता जी मुस्कुरा पड़ी। हाँ बेटा, बोलो, इसमें पूछने की क्या बात है, जो कहना है खुलकर कहो। मनाल थोड़ी झिझक के साथ बोली, अगर आप कहें तो मैं एक दिन के लिए अपनी मम्मी के पास हो आऊं, पापा को भी देख लूंगी, और बुआ जी भी जल्दी जाने वाली हैं तो उनसे भी एक बार मिलना चाहती थी, बस आपकी इजाज़त चाहिए थी, अगर आपको कोई एतराज़ ना हो तो। अनीता फी ने बहुत स्नेह से कहा, ये भी कोई पूछने की बात है बेटा, तुम जाकर उनसे मिलाओ, मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता है। ठीक है, अभी आदित्य भी घर पर नहीं है, तो तुम दो दिन के लिए दीपा जी के पास चली जाओ, उन्हें भी तुम्हारी बहुत याद आ रही होगी, आज ऑफिस के बाद वहीं चली जाना। मनाल मुस्कुरा उठी, ठीक है मॉम, ऑफिस के बाद मैं सीधा वहां चली जाऊंगी, मैं अभी मम्मी को फ़ोन करके बता देती हूँ। ऑफिस में दिन भर काम करने के बाद मनाल जब शाम को मायके पहुंची तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी कैद से आज़ादी मिली हो। घर की दीवारें, आंगन, अपनी माँ की गंध, सब उसे सुकून दे रहे थे, जैसे कितने सालों बाद इस घर में कदम रखा हो। उसके मन में यही भाव उमड़ रहे थे। उसकी माँ दीपा जी उसे देखकर बेहद खुश थीं। बेटी को गले लगाते हुए उन्होंने कहा, मनाल तू आ गई बेटा, मेरा मन बहुत बेचैन था। दीपा जी ने प्यार से उसका सिर सहलाते हुए कहा, देख बेटा, उस वक्त हालात कैसे थे, हमें लगने लगा था कि कुछ भी नहीं बच पाएगा, पापा की तबीयत, फैक्ट्री की हालत और बैंक का लोन। ऐसे वक्त में अगर आदित्य नहीं होता तो सब कुछ बिखर चुका होता। मनाल चुपचाप उनकी बात सुनती रही। दीपा जी आगे कहती गई, डॉक्टर ने भी कहा है कि तुम्हारे पापा कुछ ही दिनों में होश में आ जाएंगे, और सबसे बढ़कर मुझे आदित्य जैसा दामाद मिल गया, वो कितने अच्छे से तुम्हारी और हमारी फ़िक्र करता है, बिजनेस को भी संभाल रहा है, इतने बड़े घर का बेटा होकर भी इतना जिम्मेदार है, तू कितनी किस्मत वाली है बेटा। मनाल बस हल्की सी मुस्कान देकर सिर हिला रही थी। वो अपनी माँ का दिल नहीं तोड़ सकती थी। वो कैसे बताती कि ये शादी एक शर्त पर हुई थी, जिसे जानने के बाद शायद माँ कभी दोबारा मुस्कुरा भी ना सके। बुआ जी भी वहाँ थीं, उन्होंने भी आदित्य की खूब तारीफ की। देखो बेटा, आजकल ऐसा लड़का मिलना मुश्किल है, तू बहुत भाग्यशाली है जो आदित्य जैसा जीवन साथी मिला। भले ही उसका भाई बीमार हो, मगर वो अपनी भतीजी को इतने अच्छे घर में ब्याह कर गया है, कितनी इज्जत से रखा है उन्होंने तुझे। मनाल फिर भी मुस्कुरा दी। उसका मन अंदर से जल रहा था, मगर चेहरे पर एक भी शिकन नहीं आने दी। इन दो दिनों में आदित्य ने मनाल को एक बार भी कॉल नहीं किया। मनाल ने चैन की सांस ली। शुक्र है उसने फ़ोन नहीं किया, कहीं वो वहीं किसी और के साथ बिजी तो नहीं, उसने कंधे उचकाते हुए खुद से कहा। वैसे भी वहां तो उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड होगी ही। वो एक हल्की हंसी हंसकर रह गई। जब मनाल राजवंश हाउस लौट आई, उसी रात अचानक उसकी नींद खुली। उसे महसूस हुआ उसकी पीठ किसी की चौड़ी छाती से सटी हुई थी, कमर पर भारी सा हाथ और गर्दन पर किसी की गर्म सांसें। उसकी आंखें फट गईं। ये क्या? पीछे पलटकर देखा, आदित्य। वो उसके बगल में सो रहा था। मनाल घबरा कर उठ बैठी। अरे माना, क्या हुआ? ऐसे कोई उठता है क्या? आदित्य भी उठ गया और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। मैं बाथरूम जा रही हूँ, कहती हुई वो बाथरूम में चली गई। बाथरूम में वो लगातार खुद से सवाल करती रही, अब कैसे वापस जाऊँ बेड पर, वो तो वहीं लेटा है। काफ़ी देर तक वो बाथरूम में ही बैठी रही। उसे उम्मीद थी कि आदित्य फिर से सो जाएगा। जब वापस लौटी तो थोड़ी दूरी बनाकर लेट गई, मगर आदित्य ने खींचकर उसे फिर अपने पास हटा लिया। उसका हाथ मनाल की कमर पर था और फिर वो हाथ पेट पर आ गया। फिर उसने अपनी टी शर्ट थोड़ी ऊपर कर दी और हाथ त्वचा पर रख दिया। मनाल की धड़कनें तेज हो गईं, वो कांपने लगी, कहीं ये आगे ना बढ़ जाए, वो घबराई हुई थी। उसने आदित्य का हाथ कसकर पकड़ लिया। आदित्य हल्के से मुस्कुराया, उसे समझ में आ गया था कि मनाल डर रही है। मुझे तो बचपन से आदत है ऐसे पेट पर हाथ रखकर सोने की, अब डर क्यों रही हो? आदित्य की आवाज़ में शरारत नहीं, सच्चाई थी। थोड़ी देर में वो सो गया और फिर मनाल की भी आंख हट गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो खुद को आदित्य की बाजू पर सिर रखे हुए पाया। वो घबरा कर उठ गई। आराम से, आराम से, आदित्य बोला, तुम इतनी प्यारी हग रही थी कि मेरा मन हुआ तुम्हें उठाऊं ही नहीं। मुझे तो तुम्हारे साथ कुछ गलत करने का मन करने लगा था। उसने शरारत से आंखें मटकाईं। मनाल ने उसे घूर कर देखा। एक तो मेरी बाहों में सोई हुई थी, ऊपर से अब मुझे ऐसी बड़ी बड़ी आंखों से डरा रही हो, आदित्य ने हंसते हुए कहा। तुम्हें तो शुक्रिया कहना चाहिए कि मैंने तुम्हें इतनी देर तक आराम से सुलाया, मनाल ने बात बदल दी। आप कब आए मुझे पता ही नहीं चला। रात को चुपचाप आया था ताकि तुम्हें डिस्टर्ब ना करूं, वो मुस्कुराकर बोला। दरवाजे पर दस्तक हुई। मनाल दरवाजा खोलने उठी, मगर आदित्य ने उसे रोक दिया। तुम रुको, मैं देखता हूँ। मेड चाय लेकर आई। आदित्य ने चाय लेकर एक कप मनाल को भी दे दिया। चाय की चुस्की लेते हुए आदित्य ने फिर पूछा,
माँ ने सच सच बताना मुझे कितना मिस किया। मनाल ने उसकी ओर देखा और मन में सोचा, इस आदमी से बड़ा झूठा कोई नहीं। अगर इतनी याद आ रही थी तो सिर्फ एक दिन फोन क्यों किया, बाकी दिन तो आवाज तक नहीं सुनी। आदित्य ने फिर शरारत से कहा, वैसे किसी को भी अपनी आंखों से ऐसे नहीं डराना चाहिए, थोड़ी मोहब्बत दिखाया करो। जारी।